நமோஹரிஹந்தாணம் நமோ சித்தாணம் நமோ ஆயரியாணம் நமோ வஜ்ஜாயாணம் நமோ லோயே சௌவசாஹூணம் மங்களம் பகவான் வீரோ மங்களம் கௌதமோ கணி மங்களம் குந்த குந்தாரியோ ஜெயின தர்மோஸ்து மங்களம் சர்வ மங்கள மாங்கல்யம் சர்வ கல்யாணி காரிகம் பிரதானம் சர்வ தர்மாணாம் ஜெயினம் ஜெயது சாசனம் ஜெயினம் ஜெயது சாசனம் நம சமய சாராய ஸ்வானுபூத்யா ச காசிதி சித்ஸ்வபாவாய பாவாய சர்வ பாவாந்தரட்சிதே. பகவான் மகாவீர் சுவாமிக்கு நிர்வாண கல்யாணக் பிரசங்க பர் ஆயோஜித் இஸ் காரியக்ரம் மே அபி அப்பன் சபி லோகோனே பூஜ்ய பஹின்ஸ்ரீ கி தத்துவ சர்ச்சா ஜோ கி ஹமாரே சௌபாக்ய சே ஹம்கோ வீடியோ கே ரூப் மே உபலப்த ஹை உஸ்கா அபி அப்பன் லோகோனே லாப் லியா. தேய் கோ மத் சோக்கனா, பஸ் ஏக் பாத், தேய் தோ ஏக் சுத்தாத்மா ஹை, பாக்கி சப் ஹோதா ஹை. யே போஹத் சாரி பாத்தே அபி அப்பன் லோகோனே உன்கே ஸ்ரீமுக் சே சுனி. பஹின்ஸ்ரீ மானே க்யா? கி ஜின்கே வச்சனாமிரத் கி பிரசம்சா பூஜ்ய குருதேவ் ஸ்ரீனே இன் சப்தோ சே கி, ஜப் பஹலி பார் வச்சனாமிரத் குருதேவ் கே ஹஸ்தகத் ஹுவா, ஏக் லாக் பிரதி இஸ் கிரந்த கி சபாவ். ஔர் ஹோ பி க்யோ நஹீ, மாத்ர 15 வர்ஷ் கி உம்ர மே குருதேவ் கா பஹலா பிரவச்சன் சுனா தா. உஸ் சமய குருதேவ் ஸ்ரீ சம்பிரதாய மே தே. பஹலா பிரவச்சன் சுன்னே கே சாத் ஹீ யே பாவ் உன்கே அந்தரங் மே ஆ கயா கி இஸ் பாவ் மே சம்யக் தர்சன் தோ லேனா ஹீ ஹை. அப்பன் லோக் அப்னா மாப் கரே, அப்பன் லோக் கித்தனை பிரவச்சன் சுன்னே கே பாத் பி திருடதா கே சாத் மே அப்னே கோ யே பாவ் ஆதா ஹை கி அப்னே கோ சம்யக் தர்சன் தோ இஸ் பாவ் மே கர் ஹீ லேனா ஹை, திருடதா கே சாத் மே யே பாவ் ஆயா ஔர் இஸ் திசா மே உன்கே பிரயத்ன சாலு ஹுயே ஔர் 18-19 வர்ஷ் கி பஹுத் சோட்டி உம்ர மே குருதேவ் கி தேசனா ஸ்வயம் கி உபாதான்கத் யோக்யதா ஔர் நிமித்த நைமித்திக் சம்பந்த கா ஏசா சுமேல் பன் கயா கி உன்னோனே பவாந்தகாரி சம்யக் தர்ஷன் கோ பிராப்த கர் லியா. குருதேவ் ஸ்ரீ கோ ஜப் யே சமாச்சார் விதித் கராய கே ஸ்வயம் பஹின்ஸ்ரீ கே த்வாரா, குருதேவ் ஸ்ரீ நே யத் கிஞ்சித் பரீக்ஷா கி ஔர் உஸ்கே பாத் ஏக்தம் ஸ்திர் ஹோகே போலே க்யா ஆத்மா புருஷ் சே அனே க்யா ஆத்மா ஸ்திரீ சே. உஸ்கே பாத் தோ குருதேவ் ஸ்ரீ கே சாசன் பிரபாவனா கே காரியோ மே பஹின்ஸ்ரீ கா யோக்தான் கிசி சே சிப்பா நஹீ ஹை. ஹர் தரஹ கே பஞ்ச கல்யாணக் பிரசங்க ஹோ யா கோய் பி பிரசங்க ஹோ, உன்கே குணோ கா விஸ்தார் இத்தனா ஹோ சக்தா ஹை கி சாயத் உஸ்கே விஸ்தார் கே லியே அப்னே கோ கை கண்டோ தக் அப்பன் போல்னா படே தோ பி சாயத் உன்கே குணோ கா விஸ்தார் பூரா நா ஹோ. ஜப் குருதேவ் கே சிஷ்ய ரத்ன கி யே ஸ்திதி ஹை தோ குருதேவ் ஸ்ரீ கே பாரே மே தோ குச் கஹனா வோ சூர்ய கோ தீபக் திகானே ஜேசா ஹை. ஜின்கே சிஷ்ய இத்தனை ஜோர்தார் उस गुरु की बात तो कहना ही क्या। और देखो एक नियम होता है, पर्यायों का प्रवाह क्रम उसी दिशा में आगे चलता है जिस दिशा में जो कार्य होना हो। वैंश्री माने वो जीव के अगले कुछ ही भवों में जिनका आत्मा द्वादशांग श्रुत की रचना करने योग्य पात्रता को धारण करेगा। द्वादशांग सूत्र का मतलब भगवान जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य वाणी, उसकी सूत्र रचना का सौभाग्य जिन भाग्यशाली गणधरों को प्राप्त होता है। हमारे गुरुदेव श्री तीर्थंकर द्रव्य और बैन श्री उनके गणधर द्रव्य, ऐसे ऐसे दो उत्कृष्ट द्रव्यों का संयोग अपने को इस पंचम काल में, इस निकृष्ट काल में और इस निकृष्ट क्षेत्र में प्राप्त हुआ, यह हम लोगों का सौभाग्य है। और अनवरत रूप से 45 वर्षों तक गुरुदेव श्री के द्वारा मूसलधार तत्व की वर्षा हुई और गुरुदेव श्री की अनुपस्थिति में बहन श्री ने उस तत्व धारा को शंका समाधान के माध्यम से अपन लोगों के बीच में रखा। यह बात इसलिए भी जरूरी होती है कि गुरुदेव श्री से सामान्यतः सभी प्राणी, सभी जीव गुरुदेव श्री की सभा में प्रश्न करने की योग्यता नहीं रखते थे। हर कोई मतलब जाकर के गुरुदेव श्री से सीधा प्रश्न कर ले, ऐसे लोग बहुत संकोची होते थे, नहीं कर पाते होंगे। तो भी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान बैन श्री के पास भी जाकर के उन्होंने किया और अपने सौभाग्य से बैन श्री की तत्व चर्चाओं का यह संकलन जिसका नाम स्वानुभूति दर्शन है आज अपने को उपलब्ध होता है। मैं आज विचार कर रहा था कि गुरुदेव श्री के हाथ में बैन श्री के वचनामृत ग्रंथ आया और जब उन्होंने वचनामृत की ऐसी प्रशंसा की, काश ये स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ भी गुरुदेव श्री की उपस्थिति में प्रकाशित हुआ होता और गुरुदेव श्री के हाथ में ये ग्रंथ भी आता तो इसके बारे में गुरुदेव के क्या उद्गार होते वो आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। एक ज्ञानी दूसरी ज्ञानी की अंतर परिणति को, एक ज्ञानी दूसरे ज्ञानी के अभिप्राय को किस तरह पहचानते हैं और जगत के जीवों के हित की दृष्टि से वो उनका परिचय भी यदा कदा दे दिया करते हैं। तो गुरुदेव श्री का परिचय तो स्वयं गुरुदेव ने 45 वर्षों तक अपनी दिव्य वाणी खिरा कर दिया ही है, लेकिन बैन श्री की पवित्रता, उनका अलौकिक जाति स्मरण ज्ञान और भी बहुत सारी उनके जीवन की जो विशेषताएं हैं उन सबका महिमा, उन सबकी महिमा हमने गुरुदेव श्री के श्रीमुख से प्रवचनों में सुनी है। ऐसे बैन श्री की तत्व चर्चाओं का संकलन स्वानुभूति दर्शन अपने सामने है। पहले अपन इसमें मंगलाचरण का बोल लेंगे, शुरुआत का पहला बोल लेंगे, उसके बाद फिर अगला बोल लेंगे, क्योंकि क्रमशः नहीं लेंगे अपन, कुछ मुख्य मुख्य विशेष विशेष बोल हैं। 5-6 दिन की स्वाध्याय में अपन इन बोलों पर चर्चा करेंगे। बहुत ही गजब का है ये, प्रेरणा तो मैं सबको करूंगा कि इस ग्रंथ को आद्योपांत पढ़ें, क्योंकि जब ग्रंथ प्रकाशित होकर आया था हम लोगों ने 2-3 बार तो अपने यहां स्वाध्याय में आद्योपांत चला चुके हैं और बहुत अच्छा ग्रंथ है, सबको बार बार पढ़ने जैसा है। तो इसमें पहला नंबर का प्रश्न है, पूज्य गुरुदेव ना वचनामृतमा ओम सहज चिदानंद आवे छे तो तेमा शू कहू छे। मैंने गुरुदेव श्री ओम सहज चिदानंद, मैं दो वाक्य लिखते थे, एक तो ओम लिखते थे और विस्तार से लिखना हो तो ओम सहज चिदानंद, ये उनका एक मांगलिक वाक्य होता था। तो उस संबंध में किसी मुमुक्षु ने प्रश्न किया कि जो गुरुदेव श्री के वचनामृत में ये ओम सहज चिदानंद आता है, इसमें गुरुदेव श्री को कहना क्या है, क्या अभिप्राय है उनका। तभी उत्तर दिया कि ओम यह भगवान की वाणी है। होता है ना, भगवान की वाणी कैसी होती है? निरक्षरी ओंकारमयी वाणी तेरी, जिन धर्म की शान है। भगवान की वाणी ओंकारमयी वाणी होती है, और उस ओंकार वाणी में द्वादशांग के रहस्य भरे होते हैं। सारा द्वादशांग जो गणधर देव रचना करते हैं, भगवान की उसी ओम ध्वनि में से द्वादशांग की रचना करते हैं। तो देखो, ओम ध्वनि भगवान की दिव्य ध्वनि है, द्वादशांग की रचना का बीज है, पंच परमेष्टि इसमें समाहित तो होते हैं, बहुत सारी इस ओंकार की विशेषता है। तो कहते हैं कि भगवान की वाणी है, ओम ध्वनि निरक्षरी होती है, भगवान की वाणी निरक्षरी। और गजब ये कि भगवान के समोसरण में कितने गति के जीव होते हैं? तीन गति के जीव होते हैं, ठीक है, मनुष्य गति, देव गति और तिर्यंश गति के जीव होते हैं। तो सबकी भाषा अलग अलग होती है, एक ही होती है, सबकी भाषा अलग अलग होती है। मनुष्यों में भी अलग अलग प्रांत के मनुष्यों की अलग अलग भाषा होती है। तिर्यंश तो इतने होते हैं कि उनकी भाषा किसकी क्या है अपने तो बस का भी नहीं है वो सोचना, देवगति की जीवों की भाषा। और सारे जीव भगवान के समोसरण में ओंकार ध्वनि सुनकर अपनी अपनी भाषा में भगवान की वाणी के रहस्य को समझ लेते हैं। लघु भाषा आता है ना, कितनी भाषा होती है? 18 महाभाषा और 707 शतक है ना लघु भाषा, और वो सब भगवान की दिव्य ध्वनि में वो सब लोग सुनते हैं। अद्भुत होगी भगवान की दिव्य ध्वनि, कैसी अद्भुत होती है, निरक्षरी होती है। एक बात तो ये कही, फिर दूसरा कहा कि भाई भगवान की वाणी माने क्या, कि भगवान की वाणी माने जिन वाणी, जिनेंद्र देव के मुख से प्रवाहित भगवान की वाणी माने जिन वाणी, कि जो शुद्धात्मा को दिखाती है। और जिनवाणी नो गुरुदेव ने बहु प्रेम तो एटले तेमने ओम सह चिदानंद एम आवतो। जिनवाणी का गुरुदेव को प्रेम था, कितना प्रेम था ये बताने की जरूरत नहीं है। कितने गुरुदेव ने कितने ग्रंथों का स्वाध्याय किया अपने जीवन में, सितंबर आगम तो सारा पढ़ाई, लेकिन दिगंबर आगम में भी 181 ग्रंथों का आद्योपांत स्वाध्याय। और 181 ग्रंथों में कौन कौन से, षटखंडागम की 16 पुस्तकें हैं, हमने उनको एक माना है। मैं जो भाग में विभाजित है ना, पार्ट में विभाजित, उनको एक माना है। ऐसे गुरुदेव को जिनवाणी का कितना प्रेम था कि चारों अनियोगों के कितने शास्त्र गुरुदेव ने पढ़े होंगे, और एक बार नहीं सैकड़ों बार, समय सार पर 19 बार प्रवचन, नियम सार पर 9 बार प्रवचन। जब प्रवचन इतनी बार किए तो अंगद स्वाध्याय कितनी बार गुरुदेव ने किया होगा। ये जिनवाणी, गुरुदेव का जीवन जिनवाणी मय था, और इसी वजह से जिनवाणी के जिन रहस्यों का उद्घाटन गुरुदेव श्री की वाणी में हुआ, इतिहास पंचम काल के अंत तक अगर धर्म टिकने का निमित्त है तो अब गुरुदेव की वाणी के बिना पंचम काल के अंत तक धर्म टिकेगा, इस बात की कल्पना भी छोड़ देना चाहिए। समझ में आ गया? आचार्य भगवंत बहुत काम करके गए, लेकिन आचार्य भगवंतों के रहस्य का उद्घाटन गुरुदेव श्री जैसे ज्ञानी धर्मात्मा नहीं करते तो आचार्य की वाणी शास्त्रों में लिखी रहती, अलमारियों में बंद रहती, बेस्टनों में पैक रहती, और अपन लोग जावाणी के ज्ञानते करके अर्घ चढ़ा करके घर जाते, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। गुरुदेव श्री ने जिनवाणी का उद्घाटन किया है इस युग में। तो यह कहा इन्होंने कि जिनवाणी नो गुरुदेव ने बहु प्रेम हतो एटले तेमने ओम सहज आवतो हतो, सहज चित स्वरूप। अब देखो, या ओम तो ओम की बात होगी, ओम माने भगवान की वाणी, भगवान की वाणी माने जिनवाणी, और जिनवाणी का गुरुदेव को बहुत प्रेम था, एक बात यह कही। फिर कहा सहज चित स्वरूप, भगवान आत्मा कैसा है? तो उन्होंने कहा सहज चित स्वरूप। सहज माने जिसकी रचना किसी के द्वारा नहीं हुई। आत्मा को किसने बनाया? कोई कहेगा उसने बनाया, तो फिर प्रश्न खड़ा होगा उसको किसने बनाया। फिर कोई तीसरा खड़ा करेगा तो फिर प्रश्न होगा उसको किसने बनाया। तो सबसे बढ़िया है ना कि प्रत्येक वस्तु अनादि अनंत अकृत्रिम सहज है, तो ऐसे भगवान आत्मा वो कैसा है कि सहज चित स्वरूप है, वो चैतन्य जिसका लक्षण है, चैतन्य से भगवान आत्मा की पहचान होती है। अपन लोग कैसे पहचान करते हैं? अपन लोग पहचान करते हैं शरीर से, अपन लोग पहचान करते हैं संयोग से, अपन लोग पहचान करते हैं राग से, अपन लोग पहचान करते हैं अन्य अन्य प्रकार से जिनसे आत्मा का कोई संबंध नहीं। अभी चर्चा में आ रहा था ना आत्मा का और विभाव का भेद ज्ञान, जिनसे आत्मा का कुछ संबंध नहीं, पिछले भाव से जो आत्मा के साथ नहीं आए और अगले भाव में जो आत्मा के साथ नहीं जाएंगे, हम उन चीजों से आत्मा की पहचान करते हैं, है ना। द्रव्य कर्म से, भाव कर्म से, नो कर्म से, संयोग से, इनसे पहचान करते हैं जो आत्मा के साथ पिछले जन्म के संयोग इस जन्म में आए साथ में, और इस जन्म के जितने संयोग है वो अगले जन्म में साथ में जाएंगे। मैं तो जब भी किसी से पूछता हूं भैया क्या क्या लेके जाओगे, तो कुछ लेके नहीं जाएंगे। मैंने कहा क्या छोड़ के जाओगे? सब कुछ छोड़ के जाएंगे। मैंने कहा जो छूट जाए वो तुम्हारा नहीं, और जो तुम्हारा हो वो कभी तुमसे छूट नहीं सकता। अरे आत्मा अपना कुछ नहीं छोड़ के जाएगा, और जिनको तुम कह रहे हो कि कुछ नहीं लेके जाएगा, कि वो तो भैया पहले से ही तुम्हारा नहीं है, तुमने माना है कि ये मेरा है, लेकिन मानने से वो पदार्थ थोड़ी अपने बन जाएंगे, बराबर है ना। आत्मा कैसा? सहज चित स्वरूप, चैतन्य जिसका स्वरूप है। अरे राग भी जिसका स्वरूप नहीं, पुण्य भाव भी जिसका स्वरूप नहीं, जिस भाव से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होवे वो भाव भी आत्मा का स्वरूप नहीं, तो कौन किसकी बात करते हो अभी? एकमात्र चित स्वरूप आत्मा का स्वरूप है वो। दूसरा क्या है? आनंद स्वरूप आत्मा है। बोलो क्या बोलते हैं आचार्य ज्ञानी धर्मात्मा? क्या बोलते हैं? आत्मा आनंद स्वरूप है। ख्याल में आ गया? चीनी मीठा स्वरूप है, लेकिन मेरा मुंह कड़वा है। क्यों 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 कड़वा है? क्योंकि चीनी मुंह में नहीं ले रखी है, नीम की पत्ती मुंह में ले रखी है। आत्मा आनंद स्वरूप है, और आत्मा मैं आत्मा अभी तक क्या हुआ? यहां का ज्ञानी ने कहा आत्मा आनंद स्वरूप है। अपने को क्या पकड़ना? मैं आनंद स्वरूप हूं। देखो भाई, ये जो ज्ञानी धर्मात्मा बोलते हैं ना आत्मा आनंद स्वरूप आत्मा है, तो आनंद स्वरूप का वेदन करते करते बोलते हैं। बोलो भाई, श्री का जो वाक्य निकला होगा आत्मा आनंद स्वरूप है, तो ये आनंद स्वरूप है, ये वाक्य आनंद के वेदन सहित निकला है या मात्र धारणा ज्ञान में से निकला है? नक्की तो करो जरा। तो जब उनके वेदन सहित निकला और अपने को भले ही अभी वेदन नहीं है, लेकिन इस ज्ञानी की बात का पक्ष तो आवे अभी, आत्मा आनंद स्वरूप है। अरे साहब क्या आनंद स्वरूप की बात करते हो, हम तो महा दुखी हैं। कि मां दुखी? अरे इस बात को तू भूल गया कि मैं आनंद स्वरूप हूं, इसका नाम दुख है। नहीं तो आनंद की मूर्ति को दुखी कौन करे? जिसका रोम रोम यानी जिसका प्रदेश प्रदेश आनंद से निर्मित है, आनंद गुण है ना आत्मा का, तो आत्मा का गुण आत्मा के कहां कहां कौन कौन से हिस्से में है और कौन कौन से हिस्से में नहीं है बताओ? सारे हिस्सों में है ना। जो गुण, गुण की परिभाषा क्या है? जो द्रव्य के संपूर्ण भाग और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहे। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई साहब आत्मा के संपूर्ण प्रदेशों में आत्मा का आनंद गुण है, ये बात तो हमने मान ली, लेकिन एक शर्त तो पूरी हो गई। लेकिन आत्मा के हर अवस्था में गुण है, तो आनंद गुण अभी हर अवस्था में कहां है? अभी तो दुख की दशा चल रही है, तो दुख की दशा में आनंद गुण कहां है? कि भाई साहब आनंद गुण यदि नहीं होता तो दुख की दशा भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि दुख है वो आत्मा के सुख गुण की, आत्मा के आनंद गुण की विपरीत अवस्था है। किसी के घर में रोटी बनी और रोटी जल गई, ठीक है, तवे पे रोटी जल गई, तो रोटी जलने में क्या होता है? जलनी जैसी बदबू आती है ना, हाँ, तो वो जो जली हुई रोटी वो किस बात को प्रसिद्ध कर रही है? कि जली हुई रोटी इस बात को प्रसिद्ध कर रही है कि इसके घर में आटा है। नहीं आई बात समझते क्या है ना? तो ये जो दुख रूप अवस्था है ना अपनी, जली हुई अवस्था, आनंद गुण की, सुख गुण की जली हुई अवस्था, यानी विकृत अवस्था, कि वो इस बात को सिद्ध कर रही है। किस बात को? कि तेरे में आनंद नाम का गुण है। क्यों? क्योंकि जड़ में आनंद नाम का गुण नहीं है, जड़ में सुख नाम का गुण नहीं है, तो किसी जड़ में दुख भी हो ये बता दो, दुख भी नहीं है उसमें, क्योंकि सुख नाम का गुण नहीं है, आनंद नाम का गुण नहीं है। आत्मा में दुख है पर्याय में, तो ये पर्याय में दुख है तो वो किस बात को बता रहा है? आत्मा में आनंद गुण है, क्योंकि आनंद गुण नहीं होता, तो आनंद गुण स्वरूप भगवान आत्मा को भूलने से दुख उत्पन्न हुआ। दुख क्यों उत्पन्न हुआ? दुख की उत्पत्ति का कारण क्या है? कि दुख की उत्पत्ति का कारण यही है ना कि हम आनंद स्वरूप भगवान आत्मा को भूल गए हैं। मैं आनंद स्वरूप चैतन्य मूर्ति परमात्मा हूं, ऐसे अपने परमात्मा स्वरूप को हम भूल गए, बस इसी का नाम दुख है। पामरता है पर्याय में कहां है, और स्वभाव आत्मा परमेश्वर है कहां है? तो फिर जब आत्मा परमेश्वर है तो पर्याय में अवस्था में पामरता क्यों आई? कि आत्मा परमेश्वर है, तूने यह स्वीकार नहीं किया, इसका नाम पामरता है। गुरुदेव श्री से प्रश्न होता था ना, तो आप आत्मा को कारण परमात्मा कहते हो, है ना, ये प्रश्न होता था। तो कारण परमात्मा, कारण परमात्मा, कारण परमात्मा कहते हो, तो कारण परमात्मा है तो कार्य क्यों नहीं आता? गुरुदेव श्री का बहुत बढ़िया जवाब होता था, आत्मा कारण परमात्मा है ऐसा तूने माना है कि माना तो हो गया कार्य, क्योंकि मानने का नाम सम्यक दर्शन है ना। एक कार्य परमात्मा की पहली किस्त है सम्यक दर्शन, मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है कि नहीं, है ना। और नहीं माना तो, नहीं माना तो भैया जब वो आत्मा के कारण परमात्मा पने में फर्क नहीं पड़ा, लेकिन नहीं मानने से तुझे जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिला। इसी तरह यहां कहते हैं आनंद स्वरूप आत्मा है ना। यदि अब दुख के बोल बंद कर दो, मैं दुखी हूं, अब इस पाप रूप मान्यता का, ये मिथ्यात्व है ना, आत्मा को दुखी मानना ये क्या है? आत्मा का जैसा स्वरूप नहीं है, भगवान आत्मा जैसा नहीं है वैसा माना, मैं तो दुखी हूं। कहते ये बोल बंद कर दो अब, है ना। आत्मा कैसा है? कि आत्मा आनंद स्वरूप है। एक बार पक्ष में भी आवे जीव, पक्ष अभी तो पक्ष में ही नहीं, अभी तो अरे वो तो निश्चय नहीं से है बात, आत्मा आनंद स्वरूप है वो तो निश्चय नहीं से, अभी तो अपन दुखी हैं, निश्चय नहीं से आत्मा आनंद स्वरूप है, अभी तो हम दुखी हैं। अरे जिस समय इधर अवस्था में दुख चल रहा है उसी समय आनंद मूर्ति भगवान आत्मा विद्यमान है। क्यों? क्यों? अगर आत्मा उस समय आनंद मूर्ति विद्यमान नहीं होता तो उसकी विराधना में होने वाला दुख तुझे कैसे होता? वो है तभी तो उसकी विराधना हो रही है। अगर वो होता ही नहीं, आनंद मूर्ति होता ही नहीं, तो उसकी विराधना से होने वाला दुख कैसे होता? तो आत्मा को आनंद मूर्ति नहीं बनाना है, आत्मा को आनंद मूर्ति हूं ऐसा मात्र मानना है। माना, आत्मा की विराधना दूर हो गई। क्यों? क्योंकि जैसा स्वभाव था वैसा स्वीकार कर लिया। आत्मा को शुद्ध करना थोड़ी है, आत्मा अशुद्ध हुआ कहां है? आत्मा विकृत हुआ कहां है? आत्मा दुखी हुआ कहां है? आत्मा पामर हुआ कहां है? ये तो अज्ञानी की मान्यता में सारा घोटाला चल रहा है। स्वभाव में कुछ घोटाला नहीं है, स्वभाव सर्वांग सुंदर है, परिपूर्ण है, वर्तमान में भगवान है। एक बार ऐसा लक्ष्य करके केवल स्वीकार करने की देर है। ऐसा स्वीकार करे और फिर बोले आनंद, देखो बहन श्री जी ने बोला आनंद स्वरूप आत्मा है, तो उन्होंने आनंद के वेदन पूर्वक ये बात बोली, उनकी वाणी में आई। अभी हम आनंद स्वरूप है ये बोलना तो सीखें, है ना। अभी हम आनंद स्वरूप भगवान आत्मा है ऐसा पक्ष तो करें, आत्मा का पक्ष करेंगे तो उस पक्ष में दक्ष होंगे, और पक्ष में दक्ष होंगे तो आनंद मूर्ति भगवान आत्मा का लक्ष्य होकर अपन भी इन ज्ञानियों की पंक्ति में सम्मिलित होकर, ज्ञानी बोलेंगे आनंद मूर्ति आत्मा है और अपने अंदर से आवाज निकलेगी कि बराबर है, तो वो बराबर की आवाज आत्मा को देख करके, आत्मा का वैसा वेदन करके निकलेगी। और सच में आत्मा का जैसा स्वरूप ज्ञानी जन बोलते हैं वैसा वेदन करके आत्मा की बात के लिए बराबर बोलना, ये ज्ञानियों की सच्ची अनुमोदना है। बराबर है, आगे देखो। सहज चिदानंद ऐसे एवं आत्मा ने तू ओळख, क्या कहा, तू पहचान, ओळख आत्मा को, पहचान पहचान पहचान। आत्मा को आनंद मूर्ति बनाना नहीं है, वो तो है, केवल तू पहचान के मैं आनंद मूर्ति हूं, बोलो इतना सा काम है बस। कितना सीधा सरल धर्म होगा, इससे सरल, इससे सरसता, इससे सहज कोई धर्म का स्वरूप हो नहीं सकता। ते शेनाती ओळखाए, तो वो आत्मा किससे पहचाना जाएगा, ओम थी ओळखाए छे, भगवान नी वाणी थी आत्मा ओळखाए छे, गुरुदेव ने ओम नो भास पण थयो हतो। देखो ओमकार, मैं क्या कहा, आत्मा सेनाती ओळखाए, तो अभी उपादान की ओर से बात नहीं की, आत्मा आत्मा के द्वारा ही पहचाना जाएगा, समझा गया ना। काई अभी निमित्त की शैली से बात की, काय की बात की, कि आ ओम थी ओळखाए छे, क्या मतलब, कि भगवान की दिव्य ध्वनि, भगवान की दिव्य ध्वनि में सब आ गए। जितने ज्ञानी जन होते हैं चतुर्थ गुणस्थान से लेकर केवली परमात्मा तक के सारे ज्ञानी आ गया, वो सब उनकी ओंकार थी और ओम थी ओळखाए छे। तो ओम थी ओळखाए छे एटले तीर्थंकर की वाणी, संतों की वाणी, ज्ञानी धर्मात्माओं की वाणी, ये सब ओमकार वाणी के ही प्रकार हैं। अब अपन सोचें कि नहीं तो भैया ओम से ओळखाएगी तो अभी तो अपन कुछ कर ही नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तो अपने को ओमकार वाणी सुनने का योग नहीं है, हतोत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का विरह हो, साक्षात वीतरागी संतों का अपने को विरह हो, उनकी वाणी हम सीधी सुन नहीं सकते। आज भी गुरुदेव श्री और माताजी की टेप हमारे उस विरह को दूर करती है, यह ओंकार की ही वाणी है। जितने क्योंकि अनंत ज्ञानी होते हैं, उन अनंत ज्ञानियों का एक मत होता है, और एक अज्ञानी होता है, उस एक अज्ञानी के अनेक मत होते हैं। कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा, कभी कुछ बोलेगा। आप बता दें, गुरुदेव श्री के 13वीं बार से लगा के 19वीं बार के प्रवचन अपने को समय सार के उपलब्ध हैं, एक एक प्रवचन को सुन लेना। किसी प्रवचन में आपको लगे कि यहां गुरुदेव ने ऐसा बोल दिया था, अभी गुरुदेव की वाणी में ऐसा आया, तीन काल में कभी संभव नहीं है, है ना। पूर्वा पर विरोध रहित ऐसी गुरुदेव की वाणी और वो अपने को मिली, तो ये ओंकार ध्वनि ही अपने को मिली, ये समझना, कम मूल्यांकन मत करना उसका, क्योंकि तीर्थंकर की वाणी में और ज्ञानी की वाणी में कोई अंतर नहीं होता। तीर्थंकर की वाणी भी शुद्धात्मा के ग्रहण कराने के अभिप्राय से खिरती है और ज्ञानी की वाणी भी जीवों को शुद्धात्मा का ग्रहण कराने के अभिप्राय से खिरती है। और ऐसा नहीं होता कि तीर्थंकर की वाणी हो और कोई जीव धर्म प्राप्त ना करे, जैसे ऐसा कभी नहीं होता। उसी तरह ज्ञानी की वाणी खिरे और कोई जीव सम्यक तो प्राप्त ना करे, भले कम होंगे, भले अंगुलियों पर गिनने जितने होंगे, लेकिन कोई जीव सम्यक तो प्राप्त ना करे, ऐसा कभी नहीं होता। ज्ञानी की वाणी कभी अफल नहीं होती। अरे सम्यक तो प्राप्त नहीं भी किया, कुछ लोग मान लो इन्हें गिने लोगों ने प्राप्त किया, मान लो अंगुलियों पर गिनने जितने लोगों को सम्यक तो प्राप्त हुआ, ये मान लो अपन जो प्रसिद्ध में है ना, लेकिन कितने जीव संस्कार लेकर के गए होंगे, कितने जीव तत्व की इस विचारधारा को अगले भव तक भी साथ लेकर के गए होंगे। जरूरी थोड़ी कि इसी भव में हो। अरे संस्कार डालेगा, इस वाणी को अंतर में रचाएगा पचाएगा, यही काम होगा, और नहीं हुआ तो संस्कार लेकर के जाएगा तो अगले भव में भी काम कर लेगा। एक बार सुने रस पूर्वक, आत्महित की दृष्टि रख करके, मुझे तो मेरा भला करना है। गुरुदेव क्यों आए थे कि दुनिया सबका अनेक जीवों का कल्याण होना था, अनेक जीवों की बात छोड़ो, गुरुदेव क्यों आए कि मेरा कल्याण होना था। भगवान की दिव्य ध्वनि क्यों खिरती है कि मेरा कल्याण होना है, ये अपने को भाव आना चाहिए। उस वाणी का निमित्त रूप कनेक्शन जगत के साथ नहीं जोड़े हम, हालांकि पूरे जगत के कल्याण के लिए उनकी वाणी होती है, लेकिन उनकी वाणी मेरे कल्याण के लिए निमित्त है। उनकी वाणी के निमित्त पने का कनेक्शन हम अपने साथ जोड़ें कि ये जो धारा बही है, ये जो प्रवचन गुरुदेव श्री के चले हैं, ये मुझे आत्मा प्राप्त कराने के लिए चले। इस भावना से अगर हम गुरुदेव की वाणी सुनेंगे तो उसका कोई अलग फल अपने को आएगा। फिर एक बात कही कि गुरुदेव ने ओमनो भास पण थयो होतो, ये तो आता ही है ना, ओंकार का उनको भास हुआ। फिर पूछा किसी से कि आज तो ऐसा हुआ ओंकार ध्वनि जैसा आया कुछ, तो उन्होंने कहा कि भाई तमे तीर्थंकर पासे थी आव्या लागो छो। ये ना, ये सब प्रसंग गुरुदेव के जीवन चरित्र के साथ गुंथे हुए हैं। अभी देखो मुमुक्षु ने फिर प्रश्न किया कि सहज चिदानंद आत्मा ओंकार ध्वनि द्वारा ओळखाय, ये प्रश्न क्यों किया? अभी तक तो अपन उपादान की ओर से बात करते हैं सब, आत्मा तो आत्मा से ही जानने में आता है। अरे भाई आप कह रहे हो कि तीर्थंकर की वाणी से जानने में आता है, तो फिर वो उसने प्रश्न किया कि सच्चिदानंद आत्मा ओंकार ध्वनि द्वारा ओळखाय। उत्तर दिया बहुत अच्छा, आत्मा सहज चिदानंद छे ते ओंकार ध्वनि द्वारा ओळखाय छे। भगवान आत्मा सहज चिदानंद छे तेने भगवान नी वाणी ओळखावे छे, एवो उपादान निमित्त नो संबंध छे। आगे बात समझ, ये खुलासा आया ना, क्या एवो उपादान निमित्त नो संबंध छे, माने क्या मतलब कि तेरी उपादान की जागृति होवे और भगवान की वाणी का योग ना बने, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिनवाणी का योग ना बने ऐसा कभी हो नहीं सकता। उपादान की जागृति का और निमित्त का ऐसा सुयोग है, ऐसा संबंध है, इसमें उपादान निमित्त को बुलाता नहीं है, है ना। और उपादान जागृत हो गया और निमित्त नहीं आया तभी दो चार साल इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि निमित्त तो अभी आने में टाइम लगेगा, ऐसा कभी होता नहीं है। बोलो, ये सैकड़ों उदाहरण अपने यहां पे है। अभी दीपावली पर्व जो अपन मनाएंगे, उस दीपावली पर्व का इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है कि जो जीव भगवान आदिनाथ की सभा में, मारीची का जीव और जिसके तीर्थंकरत्व की घोषणा भगवान आदिनाथ की देवध्वनि में हुई, प्रभु आपके जैसा तीर्थंकर होने वाला कोई जीव है कि ये मारीची है, 24वां तीर्थंकर होगा। अब मारीची को यह बात सुनकर के क्या विकल्प आना चाहिए था? वो जो विकल्प आया ना उनको भगवान की वाणी का विरोध करने का, वो भगवान की वाणी का विरोध का विकल्प वस्तु स्वरूप की दृष्टि से देखो तो अनुकूल था कि प्रतिकूल था? ध्यान से सुनना जरा, थोड़ा अटपटी लगेगी बात कि भाई साहब अरे कैसी बात है, भगवान ने तो तीर्थंकर बने की घोषणा की थी और उनने भगवान की वाणी का विरोध किया, ये तो अच्छा नहीं किया। बात तो सही कह रहे हो, अच्छा नहीं किया, लेकिन भाई साहब भगवान ने यह भी कहा था कि ये 24वां बनेगा। समझ में आया कि नहीं? कितना बनेगा? कि 24वां। और उसी समय यदि वो भगवान की वाणी मान लेता वो जीव, तो उसी समय भगवान की वाणी मान लेता तो 24वां बनता? फिर इतना लंबे काल संसार में भटकना पड़ता? भगवान आदिनाथ का तो तीसरे काल में मोक्ष हो गया था। सोचना जरा, इस एंगल से सोचो कि उसकी पर्यायों का क्रम नक्की, कि इस जीव को 24वां तीर्थंकर होना नक्की है, तो 24वें तीर्थंकर के पहले पहले कौन सी पर्याय होंगी ये नक्की है कि नहीं है? सोचो जरा, इस एंगल से सोचो, वो नक्की। तो जब वो नक्की है कि 24वां तीर्थंकर तो इतने लंबे काल त्रस्त पर्याय में रहना नहीं, रह नहीं सकता, तो स्थावर पर्याय में जाना अनिवार्य, तो स्थावर पर्याय में जाने के लिए भगवान की वाणी के विरोध का भाव नहीं आएगा, तो क्या भगवान की वाणी की आराधना का भाव आएगा? विचार करो ना इस एंगल से, उस जीव के प्रति भी द्वेष का परिणाम नहीं आएगा हमें, वो सहज है, नक्की है। और जब उसी जीव को सुलटने का काल आया, अब 10वें भव में यह जीव तीर्थंकर होने वाला है, जंगल में हिरण को फाड़ करके खा रहा था, श्रोता एक वो भी हिंसक क्रूर परिणामी, और उसी समय 2 मुनिराजों ने किसी तीर्थंकर के समोसरण में वो घटना सुनी और उनका पता लिया कहां है वो। ओ मुनिराज आसमान से चल करके आए और वो शेर इतना क्रूर परिणामी था कि कोई उसकी तरफ झांकता नहीं था, झांकने में डरते थे लोग। ओ मुनिराज आसमान से उतर करके आ रहे हैं और वो उनको देख रहा है, कौन है ये जो मेरी सामने आ रहे हैं, है ना? और देखो होनहार की बात थी ना उसकी, अब काल लब्धि पकनी थी, यहां से क्रमबद्ध पर्याय का में परिवर्तन होना था, तो इधर से क्या हुआ कि उसके परिणाम बदलने गए। ओहो वो प्रशांत मुद्रा है, ऐसा ऐसा एकदम टकटकी लगा के देख रहा, और जो ही मुनिराजों ने आकर के संबोधन किया, जरा सोचो तो कि मनुष्यों की भाषा को शेर पहचान सकता है क्या? हे गजरा, हे वनराज, तू 10वें भव में तीर्थंकर होने वाला है। तो क्यों, तीर्थंकर की परिभाषा पढ़ी थी किसी पाठशाला में? गया था क्या वो? गया था पाठशाला में? तीर्थंकर किसे कहते जानता था? फिर क्या हुआ भैया? अरे मुनिराज की जय परम शांत मुद्रा समेत, मुनिराज की परम शांत मुद्रा देखकर उसके परिणाम अंतर्मुख हो गए, और जो काम आदिनाथ भगवान के समोसरण में नहीं कर पाया वो काम उसने शेर की पर्याय में कर लिया। योग्यता है, इसका नाम है उपादान निमित्त की संधि। बोलो वहां पर निमित्त साक्षात मौजूद, और वो भी तीर्थंकर परमात्मा जैसा निमित्त, और वो तीर्थंकर परमात्मा का पुत्र, और सारा परिवार मोक्ष मार्गी, गणधर उनके चाचा, चक्रवर्ती उसके पिता, है ना, कामदेव उनके चाचा, आर्यिकाओं की सभा में प्रमुख कौन थी? ब्राह्मी और सुंदरी उनकी बुआ, यानी सारा परिवार मोक्ष मार्ग में चल रहा है, और एक सारा परिवार, और वो भी उत्कृष्ट पदों पर विराजमान परिवार, तीर्थंकर, चक्रवर्ती, कामदेव, गणधर, गणिनी प्रमुख, सारे पद उनके परिवार के पास थे ना, और अपने ही परिवार के एक जीव को अधोगति गमन करने से नहीं रोक पाया। यह है वस्तु की स्वतंत्रता। आ गया। और जब उस जीव के सुलटने का काल आया तो अकेला वो तो श्रोता था और दो दो मुनिराज वक्ता थे, और वो भी आसमान से उतर करके आए, वो बुलाने नहीं गया था। सोचो जरा, यह है उपादान निमित्त की संधि, है ना। सहज सहज योग बनता है तो क्या साहब अपना भी योग होगा तो बन जाएगा, फिर अपन क्यों माथा पर। देखो भैया, गुरुदेव के शासन में अपन लोग आए वर्तमान में, और अपन लोग ये कहें कि हमारा भी योग बन जाएगा तो हो जाएगा। अरे गुरुदेव के शासन में आए, पंचम काल में ऐसे महाप्रतापी पुरुष की वाणी अपने को रुचिकर लगती है तो अपना योग तो बना बनाया है। अंतरोन्मुखी गुरुदेव की वाणी के रहस्य को समझ करके अपना काम अपने को करना है। तो यहां पे देखो, उपादान निमित्त का संबंध है, ये यहां पे उन्होंने बताया। उन्होंने प्रश्न किस एंगल से किया? अच्छा, भगवान की वाणी से पहचाना जाता है ना, है ना। उनने कहा कि मतलब अब तुम भी निमित्त को मानने लगे ना, है। तब उनने कहा कि भाई उपादान निमित्त का ऐसा योग है, जीव के समझने की योग्यता हो तो भगवान जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी उस समय उसको निमित्त होती ही है। वो वाणी ना हो ऐसा कभी होता नहीं, और वाणी से समझ जाए ऐसा भी नहीं होता, लेकिन समझेगा तो भगवान जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी ही निमित्त होगी। क्योंकि अगर वाणी मात्र से ही समझ लेता तो अनंत बार हम और आप लोग कहां गए? भगवान के समोसरण में गए, भगवान की वाणी सुनी और कोरे के कोरे आ गए। नहीं तो पक्का पता है ना, पंचम काल में अगर जन्म लिया तो आराधना करके तो जन्म नहीं लिया होगा, ये तो पक्का है। पंचम काल में जिस जीव ने भी जन्म लिया, आ गया है, कहां से आया? आराधना करके थोड़ी आया, अलग अलग गतियों से भटकते भटकते। पंचम काल में अक्षय भाई कोई भी जीव, आराधना करने वाला जीव पंचम काल में जन्म नहीं लेता। आराधना की आराधना में विराधना हो जावे तब जाकर के पंचम काल में जन्म होता है, इसका प्रमाण है शास्त्र। क्योंकि पंचम, ये पंचम काल तो दुखमा दुखमा काल है ना, ये तो महा दुखमा काल है, ये तो यहां है ना। तो इसका तो प्रमाण है कि अपने पद्म पुराण है तो पद्म पुराण में एक घटना आती है कि जब रामचंद्र जी वनवास जाने लगे, सीता जी ने भी स्वीकृति ले ली तो लक्ष्मण जी ने भी अड़ गए और उन्होंने भी स्वीकृति ले ली कि चलो हम भी चलेंगे। तो उनकी पत्नी जो थी उर्मिला, तो वो भी जिद करने लगी कि सीता जी जा रही तो मैं भी जाऊंगी। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि इनका घर परिवार का ध्यान कौन रखेगा, आप घर परिवार का ध्यान रखो, हम तो 12 वर्ष में लौट के आ रहे हैं ना, अपने जैन पुराणों के हिसाब से 12 वर्ष के अंदर वापस आ रहे हैं कि तुम नहीं आए तो मैं आर्य का बन जाऊंगी। मैं धमकियां भी कैसी होती थी पुराने जमाने में, नहीं कभी नहीं आता विचार कि पत्नी ने धमकी दी तो क्या दी, अगर तुम नहीं आए तो ये नहीं कि तुमको तलाक का नोटिस भेज दूंगी, क्या आया कि अगर तुम नहीं आए 12 वर्ष के अंदर तो मुझे आर्य का के रूप में देखोगे, मैंने मुझे नमोस्तु करना पड़ेगा, फिर समझ लेना। तो लक्ष्मण जी के मुख से एक बात कहलवाई उन्होंने, रविसेन आचार्य ने, उनने कहा कि यदि मैं 12 वर्ष में लौट के नहीं आऊं और अगर मैं अपने वचनों का भंग करूं तो मर करके पंचम काल का श्रावक हूं, ये समझ लेना। तो बहुत ऐसा स्वरूप है ये तो, और लेकिन कोई बात नहीं, आ गया पंचम काल में, वो तो जो गलती जिस अपने से हुई है तभी आए हैं, लेकिन अब जो गलती कर ली उस गलती को दोहराए तो नहीं, जो विराधना कर, विराधना के फलस्वरूप पंचम काल में जन्म हो गया, कोई बात नहीं। अब आराधना करके, आत्म स्वभाव की आराधना करके भगवान के मार्ग में क्यों नहीं चले हम लोग, वो यहां पे कह रहे हैं। तो देखो, उपादान निमित्त का संबंध है, ओम ने ओळखे ते आत्मा ने ओळखे, ओम माने भगवान की वाणी, और भगवान की वाणी का रहस्य क्या है कि चारों अनियोगों का तात्पर्य एकमात्र वितरकता है। गुरुदेव श्री ने जो परमागम के 11 सिद्धांत लिखा है और 11 सिद्धांतों में एक सिद्धांत यह भी है कि चारों अनियोगों का तात्पर्य वितरागता है। वितरागता वितराग स्वभाव के अवलंबन से होती है, आत्मा के अवलंबन से वितरागता होती है। इसका मतलब यह हुआ कि चारों अनियोग एकमात्र आत्मा के अवलंबन का उपदेश देते हैं, आत्मा के अवलंबन के बिना और कोई उपदेश किसी आगम का नहीं है। करणान योग हो, कर्म की ओर से बात करता हो, चरणान योग हो, आचरण की ओर से बात करता हो, प्रथमान योग हो, कथा कहानियों के माध्यम से बात करता हो, द्रव्यान योग में तो कुछ कहना ही नहीं है कि ये तीन अनियोगों की शैली में विभिन्नता होने पर भी प्रयोजन में विपरीत अलग नहीं है। इनका प्रयोजन एक शुद्धात्मा को बताने का है। क्यों? अपना पुराण कब खत्म होता है? कोई भी पुराण अपना होता है ना, तो अपना पुराण कभी खत्म होता है? जब उस पुराण का नायक सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि राज तिलक हो गया और द एंड हो गया पुराण का? ऐसा कभी नहीं होता अपने यहां। क्यों नहीं होता? क्योंकि राजपुराण राज, राज माने जो राजा राज मिला है वो तो पुण्य का फल है, तो पुण्य के फल पे थोड़ी पुराण खत्म करना है। ये जो पुण्य का फल मिला ना, इस पुण्य के फल को भी ठोकर मार के जिस दिन वो शुद्धात्मा की आराधना की पूर्णता प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त करेगा तब ये पुराण पूरा होगा। क्यों? क्योंकि जिनवाणी का प्रयोजन पुण्य में भी अटकाना नहीं है, पाप की तो बात ही नहीं, लेकिन पुण्य में भी अटकाना वो जिनवाणी का प्रयोजन नहीं है। जिनवाणी का एकमात्र प्रयोजन शुद्धात्मा की आराधना में जीव को लगा देना है। भगवान की वाणी तो इसी उद्देश्य से खिरी है। जीव लगे कि नहीं लगे वो जीवों की स्वतंत्र योग्यता है। वे अपने गुरुदेव ने 45 साल तक लगातार दिव्य वाणी बरसाई, कितने जीवों ने अपना सम्यक दर्शन प्राप्त किया, कितने जीव संस्कार लेकर के गए, कितने जीव कोरे के कोरे रह गए। सभी तरह के जीव होते हैं, तीर्थंकर के समोसण में भी होते हैं, गुरुदेव की सभा में भी हुए, सभी तरह के जीव सभी जगह होते हैं। लेकिन वाणी का प्रयोजन क्या था? एक प्रवचन 10,000 9,000 जो भी प्रवचन है, एक प्रवचन तो ऐसा बता दो कि जिसमें गुरुदेव ने यह नहीं कहा हो कि भाई आत्मा की आराधना ही तरह जीवन का उद्देश्य है, आत्म स्वभाव की एकाग्रता की, आत्म स्वभाव में लीनता की, आत्म स्वभाव की प्रतीति की प्रेरणा किसी एक प्रवचन में नहीं दी हो, ऐसा कोई प्रवचन लाओ। विशाभार स्त्रोत्र पर प्रवचन कर रहे हो गुरुदेव, बोले ऋषभ स्त्रोत्र पर प्रवचन कर रहे हो, भगवान की भक्ति के प्रवचन है ना, भगवान की भक्ति की स्तुति है ना, ये तो है ना, उस स्तुति के प्रवचन में भी वो बात लाए हो। क्यों? क्योंकि जब तो भगवान का स्वरूप ही नहीं जानेंगे तो भगवान की भक्ति कहां से आएगी? तो भगवान का स्वरूप क्या है? कि भगवान ने किसी की भक्ति की थी इसलिए भगवान है, कि भगवान ने अपने भगवान की भक्ति की थी और अपने भगवान की भक्ति अपने अंदर में आवे वो भगवान की वो निश्चय भक्ति है, और फिर भगवान के भक्ति के प्रति भगवान का पूजा आदि का विकल्प आवे वो व्यवहार भक्ति है। हर जगह कोई एक अनियोग तो बताओ जिसमें ये नहीं लिखा हो आत्मा की आराधना की प्रेरणा नहीं दी हो। अरे कर्म की चर्चा की आचार्यों ने, तो कर्म की चर्चा भी कर्म का बल बताने के लिए नहीं की, आत्मा का बल बताने के लिए की। क्या मतलब? कि एक आत्मा को बांधने के लिए कितने कर्म? 8 कर्म। 8 कर्म की कितनी प्रकृतियां? 148 प्रकृतियां। कि ये सब मिलकर के आत्मा को बांधने की कोशिश करती है, तो इसमें कर्म का बल है कि आत्मा का बल है? बताओ जरा, सोचो जरा, किसका बल है? एक कैदी है जो जेल में बंद है, और जेल में खुला भी है, खुला छोड़ देते ना बहुत से कैदियों को, है ना, और पुलिस वाले को कुछ भी खाना पीना हो, पान मसाला XYZ कोई भी, तो उस कैदी को कहते जावे लेके आ भैया, लेके आ, वहां से लेके आ, वापस आ जाना टाइम पे। तो वो कैदी को अपनी इस तरह की चीजें लेकर के भेज देता है और कैदी वापस आ जाता है, तो उस कैदी में कितना दम है वो अपने को पता है? सामान्य कैदी है। और एक कैदी वो है कि जिसको हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ी, एक गनमैन साथ में चल रहा है, तो पुलिस की ताकत है कि कैदी की ताकत है? ताकत किसकी है? कैदी की ताकत है, पुलिस की ताकत नहीं है, कि इतना बलवान कैदी है ना। तो 8 कर्म, 148 प्रकृतियां, किसको बांधने के लिए? एक आत्मा को बांधने के लिए। तो ये आत्मा की ताकत को बताता है कि कर्म की ताकत को बताता है? एक को बांधने के लिए 8, एक को बांधने के लिए 148 और फिर भी तुम उसे कितने लंबे काल तक भी उसको बांध के रख सके बताओ जरा। कर्मों ने आत्मा का नाश किया हो ऐसा एक पौराणिक उदाहरण लाकर के दिखा दो और 6 महीने 8 समय में 608 जीव कर्मों का नाश करके मोक्ष में जाते हैं, इसके पौराणिक उदाहरणों की कमी नहीं है। ताकत किसकी है? तो करणानुयोग ने किसकी ताकत बताई? कर्म की, आत्मा की? चारों अनुयोग आत्मा की ताकत बताने के लिए है भैया, समझ में आ गया। अनादि काल से देखो ये आ गया ना, ओम ने पहचाने, आत्मा ने पहचाने, ओम द्वारा बधु ओळखाय छे, सब आत्मा, आत्मा की दशा, कर्म का संबंध है ना, निमित्त निमित्त संबंध, संसार में क्यों भटका, क्या आज तक परिस्थिति रही, परिस्थिति रहने पर भी आत्मा का क्या बिगड़ा, क्या अगर आत्मा ऐसा का ऐसा रहा, ये सब बातें जिनवाणी के द्वारा पहचानने में आती है। आ गया, अनादि काल से जीव परिभ्रमण करे छे, आया कि नहीं है? छटाला में कहां आया? तास भ्रमण की हे बहु कथा, पे कछु कहूं कही मुनि यथा। अनादि काल से, कब से? गुरुदेव की भाषा में बोले तो आ भव पहला नो भव 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 लंबाते जाओ, कोई दिन भव के बिना नहीं रहा। यह एक परिस्थिति थी, ध्यान से सुनना, कि कोई दिन नहीं, कोई समय भव के बिना नहीं रहा, यह एक परिस्थिति। और दूसरी परिस्थिति यह कि किसी भी एक भव के भाव ने भगवान में प्रवेश नहीं किया। क्या कहा? एक समय भी भव के बिना रहा हो ऐसा कभी हुआ नहीं, और भगवान आत्मा में एक समय के भव के भाव ने भी प्रवेश कर लिया हो कि ऐसा आज तक हुआ नहीं। भगवान आत्मा भवों के बीच में रहने पर भी भगवान आत्मा में भव नहीं घुसा। भगवान आत्मा भव और भव के भाव से भव के काल में ही रहित है, निगोद के काल में भी निगोद से रहित है, मनुष्य के काल में ही मनुष्य से रहित है। ये सब भव भव के भाव से भगवान आत्मा रहित रहा है, अनादि काल से परिभ्रमण करता आया। अवस्था की दृष्टि से देखोगे तो हर अनादि काल से परिभ्रमण करे छे, करता है, लेकिन तेमा भगवान साक्षात मले। अब परिभ्रमण करते 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 भगवान मिल गए, भगवान की वाणी मिल गई, अथवा गुरु की वाणी मिले, कोई भी मिले, क्या फर्क पड़ता है उससे? कहने जी मैं तो भगवान की वाणी सुन के मोक्ष जाऊंगा, तो भाई इतने 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 काल तक क्या किया था फिर? भगवान की वाणी तो इतनी बार मिली थी, अब जो अभी जो मिल रही है उसे भगवान की वाणी मान? ये ज्ञानी की वाणी किसकी वाणी है? है ना, भगवान की वाणी है। ज्ञानी अपने घर से कहते हैं क्या? भगवान ने जो कहा उसी का उन्होंने अनुभव किया और अपने अनुभव से वो ज्ञानी बोलते हैं। तो वो यहां पे कह रहे हैं कि भगवान की वाणी मिले अथवा गुरु की वाणी मिले, कोई मिले, त्यारे आत्मा ने ओळखे। प्रयत्न खुद को है, भगवान की वाणी मिले और खुद उस दिशा में आत्मा को देखने का प्रयत्न करे तो आत्मा को पहचान ले। नहीं प्रयत्न करे तो भैया क्या होगा? तो अनंत काल से जो चक्र चला आ रहा है वही चक्र फिर चलता रहेगा। अभी मिटाना है तो उसकी बात है ना। ऐसा उपादान निमित्त का संबंध है, अर्थात ऐसा वाणी के साथ निमित्त नैमित्तिक संबंध है। उपादान तेरा जागे तो भगवान की वाणी निमित्त, गुरु की वाणी निमित्त है ना, और नहीं जगे तो केवली आगल रह गए हो कोरो। आ गया है ना, मैंने कषाय की मंदता के परिणाम करके 9वें ग्रेवक तक चला गया, चारित्र की मंद कषाय की मंदता में क्या कमी थी? उससे ज्यादा कषाय की मंदता का परिणाम तो कर नहीं सकता पंचम काल का जीव। ज्ञान के उगाड़ में 11 अंग 9 पूर्व का पाठी, बोलो, आत्मा के बारे में जर्रा जर्रा, आत्मा के बारे में सब कुछ बता दे मैंने आत्मा के बारे में सब कुछ जानता है, ग्यारह अंग नौ पूर्व का पाठी है ना, तो आत्मा के बारे में सब कुछ जानता है और आत्मा को नहीं जानता, गजब हो गया। आत्मा को जानना और आत्मा के बारे में जानना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। आत्मा के बारे में जानना होता है परलक्षी ज्ञान में, और आत्मा को जानना होता है स्वलक्षी ज्ञान में। ज्ञान जब स्वलक्ष्य करता है तब आत्मा को जानता है, और जब स्वलक्ष्य नहीं करता और भले ही आत्मा की बात सुनता है तो आत्मा के बारे में जानता है लेकिन आत्मा को नहीं जानता। अब अपन लोग किस श्रेणी में आते हैं अभी, वो नक्की करना है अपने को, है ना। और अगर हम आत्मा के बारे में जानने वाली श्रेणी में आते हैं तो अभी किस श्रेणी में आना अपने को, आत्मा को जानने की श्रेणी में आना है, क्योंकि गुरुदेव हमें आत्मा के बारे में जानने वाला शिष्य नहीं देखना चाहते थे। गुरुदेव क्या देखना चाहते थे, कि बदा जीव भगवान छे, बदा जीव भगवान थाओ, है ना। तो भगवान थाओ कब, जब हम आत्मा को जानेंगे। आत्मा के बारे में जानना और आत्मा को जानने में यह अंतर है, इसलिए परलक्षीपना भी छोड़कर ज्ञान के वर्तमान उपयोग को भगवान आत्मा के सन्मुख करके उसमें हमें भगवान आत्मा का साक्षात्कार हो तो वो समझ लो स्वलक्षी जानपना है, और ऐसा जानपना हो तो फिर वो अलग बात है, अलग उसमें अलग ही बात होती है। तो यहां पर ये बात कह रहे हैं कि गुरुदेव ने जिनवाणी नो कोई जुदीज जातनो प्रेम हतो, तेमने अंदर थी सहज श्रुतनो प्रेम हतो। और ये जो जिनवाणी का ये जो प्रेम है ना, देखो ये जो सारे जगत के जीव आत्मा को समझें, आज ही आत्मा को समझें, है ना, और 104 डिग्री की बुखार में भी, 91 साल की उम्र में भी शिविरों के दौरान गुरुदेव श्री को प्रवचन करते अपन लोगों ने देखा है। क्या था वो, डॉक्टर मना कर दिया कि नहीं नहीं साहब अभी नहीं, कि नहीं नहीं बेचारे कितने दूर दूर से ये लोग आए हैं, अपनी घर की सुविधा छोड़ के सुनने के लिए आए हैं। और ये जो करुणा कि सभी जीव जिनवाणी को समझ जाएं, गुरुदेव की कई तो प्रताप था ना, कि आज हम लोगों के घर घर में जिनवाणी है। बोलते थे गुरुदेव, एक रुपए की अगर जिनवाणी तुमको पड़ती है तो 5 पैसे में उस जिनवाणी को घर घर में पहुंचाओ। ये एक शक्तियों के प्रवचन में गुरुदेव ने बोला, जिनवाणी पहुंचाओ घर घर में। ये क्योंकि ये जिनवाणी ये जीवों के उद्धार में निमित्त बनेगी। इस तरह का गुरुदेव का जो अलौकिक प्रेम था जिनवाणी के प्रति, जिनवाणी के जिन मार्ग की प्रभावना का जो प्रेम था, कि वही तो प्रेम है जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण होता है। आगे समझ में, ऐसा अद्भुत है। अब इसके बाद अगला जो आगे आएगा वो कल अपन लेंगे, कि गुरुदेव पूर्वे सामली ने आव्या हताने, तो ये बिंदु अपन कल की स्वाध्याय में लेते हैं।
अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, नंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी आत्मस्वरूप सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। ऋषभदेव आदि महावीर स्वामी पर्यंत 24 जिनेन्द्र भगवान नोम जय। श्री सिमंदर स्वामी आदि अजित वीर्य पर्यंत विश विहरमान जिनेन्द्र भगवान नौज श्री समयसर आदि सर्व जिनवाणी मात नौज अखंड साधना ना प्रतीक श्री बाहुबली मुनीश्वर भगवान नौज कुंद कुंद आचार्य आदि सर्व मुनीश्वर भगवान नौज अनंत अनंत उपकारी श्री कहन गुरु देव नौज प्रसम मूर्ति भगवती मात नौ परम कृपाणु देव नौ श्री सनातन दिगंबर जैन धर्म नौ जय हे जिनवाणी भारती तो हे जपो जिन रैन जो तेरा शरणाग रहे सो पावे सुख चैन जा वाणी के ज्ञान से सूजे लोकालोक सो वाणी मस्तक नमू सदा देत हूँ बोली जिनवाणी मात नौ जय।